वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम पुराने नियम में पाई जाने वाली पुस्तक रूत का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस पुस्तक के अध्ययन से अवश्य आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। प्रभु की आशीषों को यूं ही प्राप्त करते रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं उन नए श्रोताओं का स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। पिछले अध्ययन में हमने रूत की पुस्तक उसके एक अध्याय उसके 16 पद तक हमने अध्ययन किया और इसमें हमने देखा कि रूत अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेती है जो परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरता है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और रूत की पुस्तक के एक अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ेंगे। कृपया आप मेरे साथ अपने बाइबल में से देखें रूत की पुस्तक एक अध्याय उसका 17 पद। लिखा हुआ है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मेरे प्रिय मित्रों, रूत का यह निर्णय 7 गुना था और परमेश्वर का सच्चा चुनाव था। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विशेष ध्यान दें क्योंकि आज के समय में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। जब विश्वासी परमेश्वर के प्रति समर्पण के अनेक निर्णय लेते हैं परंतु निभाते नहीं हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें इसका उत्तरदायी ठहराता है। आज हमें ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है जो परमेश्वर के लिए सच्चा निर्णय ले। रूत का निर्णय ऐसा ही एक सच्चा निर्णय था। सबसे पहले तो रूत ने कहा, जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। दूसरे शब्दों में उसने नौमी से कहा, मैंने तेरे ही साथ जाने का निर्णय लिया है और मैं तेरे साथ जाऊंगी। मैं इसराइल में प्रवेश के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ। उसका दूसरा निर्णय था, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। दूसरे शब्दों में वह नौमी के साथ जाएगी ही नहीं, उसके साथ अपनी पहचान बनाए रखेगी। मेरे प्रियो, मैं तेरी दरिद्रता को अपनाऊंगी, यह उसका कहना था। वह उसी नाम को धारण किए हुए है जो प्रफुल्ल सूर्य ज्योति के पुत्र से विवाह करते समय उसका था। वह नौमी के साथ ही रहेगी। उसका तीसरा निर्णय था, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। मैं अपने मूर्ति पूजक लोगों को त्याग परमेश्वर के लोगों से पहचान बनाऊंगी। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर के लिए कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे जब तक कि आप परमेश्वर के लोगों के साथ अपनी पहचान न बनाएं। इसके बिना कुछ भी करना असंभव है। रूत जानती थी कि उसने कहा, तू कहती है कि मुझे जाति बाहर माना जाएगा, तो ठीक है, मैं जाति बाहर ही रहूंगी परंतु तेरे लोग मेरे लोग होंगे। अब चौथा निर्णय सुनिए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे मित्र, अब मैं आपको समझा सकता हूं कि इस जवान स्त्री रूत ने नौमी के दुर्बल पुत्र से विवाह क्यों किया। उस परदेशी से जो रोटी और स्तुति के घर से निकल उसके पड़ोस में आया था। मेरे विचार में इसका कारण स्पष्ट है, उसने पहली बार जीवित और सच्चे परमेश्वर के बारे में सुना। उसकी भेंट उस परिवार से हुई जो जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को जानता था। उसने उस परिवार में विवाह इसलिए किया कि वह जीवित एवं सच्चे परमेश्वर को जानने लगी थी। इसलिए वह कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह कैसा अद्भुत निर्णय उसने लिया। यही नहीं, उसने यहां तक कहा, तू जहां मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। मेरे प्रिय मित्र, यह आपकी और मेरी तुलना में रूत के लिए अधिक अर्थपूर्ण था। उसके कहने का अर्थ था, इसराइल की आशा मेरी आशा है। इसराइल का क्या यह विश्वास था कि एक दिन वे मृतकों में से फिर जी उठेंगे और उस देश में वापस जाएंगे और वास करेंगे। अब्राहम की यह आशा थी, उसे कभी विश्वास न था कि वह मरणोपरांत स्वर्ग जाएगा। उसका विश्वास था कि इस पृथ्वी पर ही वह मृतकों में से जी उठेगा और यही कारण था कि उसने मकपेला की गुफा खरीदी और सारा को वहां दफन किया। अब्राहम को भी वही दफनाया गया था। इसहाक को भी यही आशा थी। याकूब, जिसकी मृत्यु मिस्र देश में हुई थी, उसने भी यही कहा था कि उसे उसके पूर्वजों के साथ दफन किया जाए। इसका कारण यही था कि उन्हें मृत्यु के बाद की आशा थी। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 पद 10 के अनुसार, उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्र, एक दिन इस पृथ्वी पर यह सच होगा, यह पुराने नियम की आशा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके पद 2 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो उनके लिए यह बात बड़ी विचित्र एवं नई थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे इस पृथ्वी पर अनंत कालीन घर देगा। रूत ने नाओमी से केवल यही नहीं कहा कि जहां वह मरेगी वहां वह भी मरेगी, परंतु यह कि वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। आप स्वयं देख सकते हैं कि उसकी आशा उस देश में है जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब की थी। उसमें पुराने नियम की आशा वास करती थी। अब उसका 7वां निर्णय था, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मेरे मित्रों, यह कैसा प्रशंसनीय निर्णय है। उसने यह नहीं कहा कि यह निर्णय एक दिन या एक घंटे का है, मेरा यह निर्णय अनंत कालीन है। मित्रों, हम रूत में सच्चा मन फिराव को देखते हैं। आज हम मन फिराव या पश्चाताप के बारे में बहुत सुनते हैं और आम धारणा यह है कि पश्चाताप का अर्थ है कुछ आंसू टपकाना। आपको दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय पद 10 का स्मरण होगा, परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। ध्यान दीजिए कि पश्चाताप उद्धार नहीं है, उद्धार पश्चाताप का परिणाम है। संसार का शोक मृत्यु लाता है। संसार का शोक क्या है? आंसू बहाना। सांसारिक मनुष्य आंसू बहाता है। अब चौराहे पर खड़ी इन 3 स्त्रियों को फिर से देखें। उर्पा ने भी उतने ही आंसू बहाए जितने रूत ने बहाए थे, परंतु इन दोनों स्त्रियों में क्या अंतर था? अंतर स्पष्ट है। उर्पा ने अनेक आंसू बहाए परंतु उनमें पश्चाताप नहीं था। सच्चा पश्चाताप क्या है? दूसरा क्रंथियों की पत्री 7 अध्याय के 10 पद में जो शब्द है उसका अर्थ है मन को बदल देना, अर्थात जिस दिशा में अग्रसर है उस दिशा से मुंह मोड़कर विपरीत दिशा में चल पड़ना। अनेक जन उस स्थान पर आ तो जाते हैं जहां उनका विवेक कहता है कि उन्हें बदलना है, या वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, परंतु वे कुछ आंसू बहाते हैं और उसी दिशा में चलते चले जाते हैं। उर्पा ने भी ऐसा ही किया था। उसने रूत के साथ आंसू बहाए परंतु दिशा बदलकर बैतलहम नहीं गई और न ही परमेश्वर को अपनाने का निर्णय लिया, वह मूर्ति पूजा में लौट गई। आज ऐसे अनेक लोग हैं, वे आंसू बहाते हैं परंतु आंसू मन परिवर्तन का नहीं है, वह मन परिवर्तन का उत्पात हो सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी एक छोटे जहाज के बारे में कहा करते थे जो उनके बचपन के समय में चलता था। वह जहाज जब धारा के विपरीत या विरोध ऊपर जाता था और यदि उसने सीटी बजाई तो वह पीछे लौटने लगता था, क्योंकि उसमें दोनों कामों के लिए भाप पर्याप्त नहीं होती थी। आज ऐसे अनेक जन हैं, वे मसीह के उद्धारक अनुभव को कभी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वे अपने पापों पर बहुत आंसू बहाते हैं, वे सीटी बजाते हैं, वे अत्यधिक भावनात्मक हो जाते हैं, वे भावना से भरी गवाही देते हैं, परंतु उनका जीवन उचित नहीं है। मैं अनेक मनुष्यों को जानता हूं जो गवाही देकर श्रोताओं को रुला देते हैं, उनकी वाणी से आंसू निकलती है। मैं उन पर कभी भरोसा नहीं करता। मैं उन्हें नया जन्म प्राप्त मनुष्य नहीं मानता। वे भावनात्मक बातें करते हैं, वे उर्पा की नाई हैं। मेरे मित्र, अपनी सेवा में मैंने आंसुओं पर भरोसा करना छोड़ दिया है। मैं जानता हूं कि ये आंसू बहाने वाले वास्तव में निर्णय नहीं ले सकते हैं। एक मनुष्य जिसकी आंखें सूखी है वह मसीह के लिए सच्चा निर्णय ले सकता है जो सच्चा होगा। मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कलीसिया में ईस्टर की सुबह 2 दंपति आए। वे रो रहे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे। हमारी समझ में नहीं आया कि वे क्या कह रहे थे, परंतु उन्होंने कलीसिया अगुओं पर अपने उद्धार का बड़ा अच्छा प्रभाव डाला। वे ढोंगी थे और वहां पर दूसरा दंपति भी था जो रो नहीं रहा था। अब क्योंकि उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, इसलिए हमारे एक प्राचीन ने मुझे अलग ले जाकर पूछा, क्या आप सोचते हैं कि उनमें मन फिराव आया है? यह लगभग 25 वर्ष पुरानी बात है और मैं उनसे कभी कभी भेंट भी कर पाता हूँ। वे आज भी प्रभु में दृढ़ हैं। मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मसीह के निमित्त सच्चा निर्णय लिया है या केवल आंसू बहाए हैं? आंसू अपने आप में अर्थहीन है और सांसारिक शोक मृत्यु लाता है। मेरे मित्रों, ऐसा पश्चाताप किसी काम का नहीं है, परंतु सच्चा पश्चाताप खेदित मन का नहीं होता है, वह उद्धार के मार्ग पर ले चलता है और आप में रूत की नाई सच्चा मन फिराव होना अवश्य है। रूत ने परमेश्वर के लिए सच्चा निर्णय लिया। उसने कहा, मैं दरिद्रता स्वीकार करती हूँ, मैं जाति बाहर होना स्वीकार करती हूँ, मैं आजीवन विधवा रहना भी स्वीकार करती हूँ। मेरे प्रिय, वह परमेश्वर के लिए यह सब स्वीकार कर रही थी। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वह नवमी के साथ बैतलहम जाएगी। आइए देखते हैं, प्रफुल्ल सूर्य ज्योति रूत को जानती थी। एक अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। मेरे प्रियो, वह जानती थी कि रूत का निर्णय बदल नहीं सकता, अतः उसने रूत को बाध्य नहीं किया। तब हम एक अध्याय उसके 19 पद में आगे देखते हैं, सो वे दोनों चल निकली और बेतलहम को पहुंची, और उनके बेतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नवमी है। मित्रों ध्यान दीजिए, अब वह बिस्रा परिवार घर लौटा, परंतु वह परिवार था ही कहां, केवल प्रफुल्ल सूर्य ज्योति जो अपहचान में नहीं आ रही थी, और एक युवती रूत मात्र ही उस परिवार में थे। वहां के लोगों ने पूछा, क्या यह नवमी है, क्या यह वही प्रफुल्ल सूर्य ज्योति है। आइए हम देखते हैं रूत की पुस्तक एक अध्याय उसके 20 और 21 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे नवमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नवमी कहती हो। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, अब मैं गणित तो अधिक जानता नहीं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि पूरा और खाली में बहुत बड़ा अंतर है। शून्य और कुछ में संख्याओं का अंतर है, एक और खाली और एक और भरा पूरा है। नवमी भरी पूरी गई थी और खाली लौटी है। मित्रों क्या मैं यह कहूं कि आप परमेश्वर की संतान है तो आप स्वर्ग की सब आशीषों से भरे पूरे हैं और आपके पास मसीह में सब कुछ है। जब आप उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं और उसकी सहभागिता से वंचित हो जाते हैं, तब आपको कुछ पता चलता है। आपको तब समझ में आता है कि आप परदेश में मार खा रहे हैं, और जब वहां से घर लौटते हैं तब आप खाली होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप खाली घर लौटे, जैसा उड़ा पुत्र ने किया था। आप देखेंगे कि पिता बाहें फैलाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह आपको ऐसी आशीषें देगा जैसे आपने पहले कभी नहीं पाई। वह आपके साथ अति उत्तम व्यवहार करेगा। उड़ाव पुत्र के साथ उसने ऐसा ही किया था। उसे अच्छे वस्त्र पहनाए गए, उसके लिए पाला हुआ अच्छा पशु काटा गया और आनंद मनाया गया। यह सब उस पुत्र के लिए था जो घर लौट आया था। नवमी ने अपनी सहेलियों से कहा कि उसे नवमी नहीं मारा कहे, अर्थात दुखियारी। उसने ऐसा ही कहा। हम रूत की पुस्तक एक अध्याय उसके 21 अध्याय के बी पार्ट को देखते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो जब कि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है, सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नवमी कहती हो। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, आप सोचेंगे कि उन्होंने उसे मारा पुकारना आरंभ कर दिया होगा। जी नहीं, परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही छोड़ देता है। इस प्रकार नवमी घर लौटी, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वह फिर से प्रफुल्ल सूर्य ज्योति होगी। आइए हम आगे पढ़ते हैं, रूत एक अध्याय के 22 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार नवमी अपने मुआबिन बहु रूत के साथ लौटी जो मुआब देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ के समय बेतलहम में पहुंची। अब ध्यान दीजिए, बेतलहम में आने का यह समय अच्छा था। हमने मोआब को पीछे छोड़ दिया है और अब अगले अध्याय में हम बोआज के खेतों में जाएंगे। उसके खेत भी बेतलहम में ही थे। यहाँ पर अध्याय एक समाप्त होता है और दूसरे अध्याय में हम देखेंगे बोआज के खेत में। आइए हम पढ़ते हैं रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद। नवमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। यहाँ हमारा परिचय बोआज से कराया गया है। वह कहानी का मुख्य नायक है। वह हमारे समक्ष कुटुंबी मुक्तिदाता की भूमिका को निभाएगा। परंतु कुछ समय बाद, यहाँ ध्यान देना एक महत्वपूर्ण बात है कि उसे आरंभ में ही नवमी के पति का परिजन बताया गया है। एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। मैं इसे प्रभु यीशु का प्रतीक ना मानकर आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। आपके और मेरे लिए भी कहा जा सकता है कि हमारा एक कुटुंबी है, वह जो हमारे समान बनाया गया परंतु निष्पाप था। इब्रानियों के पत्र अध्याय 7 उसके 26 पद में लिखा है, पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग। वही एक है जो हमें सर्वांगीण उद्धार प्रदान कर सकता है। बोआज का अर्थ है शक्ति। वह धन की शक्ति रखता था, और मुझे बताया गया है कि इसका अनुवाद सामर्थ्य योद्धा भी किया जा सकता है। मेरे मित्रों, उसे महान वकील भी कह सकते हैं। बोअज के संबंध में ये तीनों अर्थ प्रासंगिक हैं। वह सामर्थी योद्धा है, वह धन संपदा में सामर्थी है, वह महान वकील है। हमारा परिचय एलीमेलेक के इस कुटुंबी से करवाया जा रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। रूत 2 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, और मोआबिन रूत ने नवमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। मित्रों, यहां हमें तीन अति विचित्र नियम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारे नियम में ऐसा कुछ नहीं है। यह मूसा की व्यवस्था थी कि कटनी पर खेत में गिरी फसल गरीबों को उठाने के लिए दिया जाए। यह गरीबों की सुधि लेने की परमेश्वर की अपनी ही रीति थी। नौमी और रूत बहुत गरीब थे। रूत ने कहा कि वह जाकर खेत में जाकर सीला बीने, जो यह स्पष्ट करता है कि वे बहुत गरीब थे। मेरे मित्रों, हम इस नियम का संदर्भ देखेंगे। उल्लेख अनेक स्थानों में किया गया है, और उदाहरण के लिए लय व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय उसके 9 और 10 पद में देखें। फिर तुम जब अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाग की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाग की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अपने प्रजा को आदेश दिया था कि वे गरीबों की सुधि ले और इस विचित्र विधि को अपनाएं। परमेश्वर के पास राहत कार्य नहीं थे और न ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम थे कि गरीबों को गरीबी कोष से पैसा दिया जाए। मेरे विचार में परमेश्वर का यह प्रावधान बड़ी बुद्धिमानी का था। उन्हें परिश्रम करके सीला बिनना होता था, और हम लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय के 22 पद में खेत के स्वामियों के लिए निर्देश को पाते हैं। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से ना काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और अंतिम संदर्भ है व्यवस्था विवरण 24 अध्याय के 19 पद में, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए, तो उसे लेने के लिए फिर से ना लौट जाना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। मेरे मित्रों, उस युग में गरीबों की सुधि लेने की यह परमेश्वर की रीति थी। उसने उन्हें राहत कोष में नामांकित नहीं किया, न ही खाद्य सामग्री की पंक्ति में खड़ा किया। उसने उन्हें दया का पात्र नहीं बनाया। उसने उनके लिए कुछ काम नियुक्त किया। उन्हें कुछ पाने के लिए काम करना पड़ता था। उन्हें खेतों में जाकर हाथ से अन्न बीनना पड़ता था। उस युग में कटाई के समय लगभग 30% अन्न खेतों में गिर जाता था। आज हाथ से काम करना अधिक कार्यकुशल नहीं माना जाता है। उन्हें परमेश्वर का निर्देश था कि वे एक ही बार खेत में जाए, दूसरी बार नहीं। परमेश्वर ने कहा, एक बार कटनी काटने के पश्चात दीनहीनों और विधवाओं और अवनाथों को खेत में आने दो। मेरे विचार में परमेश्वर की यह व्यवस्था अति उत्तम थी। आज की आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था में यह विधि अनुकूल है, परंतु रूत के युग में यह कार्यकारी थी। जब 30% अन्न खेतों में गिरता था, आज तो ऐसी मशीनें हैं जो अन्न की कटनी और दौने करने उसे बोरों में हाथ के हाथ भर देती है। यदि एक दाना अन्न गिर भी जाए, तो उसे मशीन की भुजा उसे उठाकर बोरे में डाल देती है। आज खेत में कुछ नहीं बचता है। यह परमेश्वर की व्यवस्था थी, क्योंकि गरीबों को नगण्य समझा जाता था। मेरे मित्रों, परमेश्वर को गरीबों की चिंता है। केवल परमेश्वर के वचन में ही गरीबों के लिए स्थान है। आप स्वयं ही परमेश्वर के वचन को देख सकते हैं। आप स्वयं ही संसार में देख सकते हैं। आज हम पूर्वजों के परिश्रम का फल खा रहे हैं। हमें परमेश्वर की आशीषें प्राप्त है। आप में से अनेक जन गरीबी को स्मरण कर सकते हैं। मैं स्वयं भी एक अत्यधिक गरीब बालक था। आपकी भी पृष्ठभूमि शायद ऐसी ही रही होगी। हम परमेश्वर के वचन के बहुत बड़े ऋणी हैं, मेरे मित्रों, क्योंकि केवल परमेश्वर का वचन ही गरीबों को मान देता है। राजनीतिज्ञ नहीं करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उन्हें केवल वोट चाहिए, गरीबों का कल्याण नहीं। परमेश्वर गरीबों का कल्याण करता है, और यह परमेश्वर की एक अद्भुत व्यवस्था है। अतः रूत इस नियम का लाभ उठाती है, जो हमें बड़ा विचित्र लगता है। वह गरीब भी थी और परदेशी भी। उसने सीला बिनने की अनुमति मांगी, और नौमी ने उसे जाने दिया। मेरे मित्रों, हम देखते हैं रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है, सो वह जाकर एक खेत में लौने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलिमेलेक के कुटुम्बी बोआज का था। मेरे मित्र, यदि आपने उस दिन रूत को सड़क पर जाते हुए देखा होता तो आप देखते कि एक लड़की जा तो रही है परंतु जानती नहीं कि किस खेत में जाए। वह बोआज के खेत में कैसे गई? उसका बोआज के खेत में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण था। यदि वह वहां नहीं जाएगी तो आप ज्योतिषियों से कह दें कि उनका बैतलहम आना किसी काम का नहीं है, क्योंकि यीशु का जन्म वहां नहीं होगा। आप चरवाहों से भी कह सकते हैं कि वे पहाड़ों में ही रहें, क्योंकि यीशु बैतलहम में जन्म नहीं लेगा। मेरे मित्रों, उस युग के इसराइल देश में बैतलहम एक विशेष नगर था। सब नगर पहाड़ों पर बसे थे और बैतलहम अलग नहीं था। स्पष्ट है कि वहां घाटी में जो उपजाऊ भूमि है वह बोआज के खेत थे। उस दिन जब रूथ शहर से निकली तो उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलिमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। अब एक प्रश्न उठता है, उसके लिए सही खेत में जाना अति महत्वपूर्ण था, तो उसने बोआज का खेत कैसे चुना? क्या परमेश्वर ने लाल और हरी बत्तियां लगाई थी या उस ओर तीर का चिन्ह लगाया था? जी नहीं। तब क्या आकाशवाणी हुई थी? जी नहीं। उसे शायद दर्शन हुआ? जी नहीं, दर्शन भी नहीं हुए। तब वह लड़की कैसे सही खेत में पहुंची? आइए हम रूथ से ही पूछते हैं। रूथ, हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हें बोआज के खेत में जाने के लिए किसी न किसी प्रकार की अगुवाई अवश्य प्राप्त थी। वह कहेगी, नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। आप रूथ की पुस्तक ठीक से पढ़ें। वहां लिखा है कि मैं संयोग से जिस खेत में पहुंची वह बोआज की खेत था। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो यह संयोग प्रतीत होता है, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से वह कुछ और था। वह उसे उचित खेत में ले जा रहा था, परंतु वैसे नहीं जैसे अनेक जन आज कल्पना करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा के प्रकाशन को ऐसा सोचते हैं जैसे उसने तार भेजा हो या स्वर्ग से कोई पत्र आया हो। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज के युग में ऐसा नहीं करता है, और मैं नहीं सोचता कि उसने पहले भी ऐसा किया होगा। निसंदेह उसने पुराने नियम में अनेकों का सीधा मार्गदर्शन किया है, परंतु रूथ उनमें से नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य निर्णयों की तुलना में रूथ का यह निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण था। परमेश्वर ने योना से कहा था, जिसे हम योना की पुस्तक 1:2 में पढ़ते हैं, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। और उसने यर्मिया तथा यजकेल से कहा था कि वे खुलकर बोलें, परंतु मैं यहाँ यह कहूंगा कि इन लोगों को परमेश्वर का सीधा निर्देश इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि रूथ का सही खेत में प्रवेश करना। क्यों? क्योंकि बैतलहम में यीशु का जन्म उसके द्वारा ही सही खेत में प्रवेश करने पर निर्भर था। सब कुछ परमेश्वर के अधीन है, और वह अदृश्य में रहकर मार्गदर्शन कर रहा था। परमेश्वर की इच्छा के बारे में यही एक अद्भुत बात है। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर के लिए आवश्यक है कि वह हमें सड़कों का नक्शा दे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि वह ऐसा करे। आज मैं कुछ लोगों की बातों को सुनता हूं जैसे कि परमेश्वर ने उन्हें सड़कों का नक्शा दे दिया हो। वे कहते हैं, मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं यह करूं, और मैं जानता था कि यह परमेश्वर की इच्छा है। काश मैं भी ऐसा ही निश्चित एवं पक्का होता। मेरे मित्रों, कई बार मुझे और आपको भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, अर्थात निर्णय लेना होता है, और हम निश्चित नहीं हो पाते हैं कि हमें क्या करना है। और जो हमारे मन में आता है हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की ओर से है, और कई बार हम गलत ठहरते हैं। लेकिन परमेश्वर अदृश्य रूप में अपने कार्यों को हमारे जीवन में करता है। उसने मेरे जीवन में भी किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे वहां से अपने लिए चुन लिया। मेरे मित्रों, जहां तक आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा का विषय है, आप यदि यह सोचें कि वह प्रत्येक कोने पर हरी बत्ती लगा देगा या तीर का चिन्ह लगाएगा या आकाशवाणी होगी, तो आप भ्रम में हैं। वह ऐसा नहीं करता है। और जब मैं मनुष्यों से ऐसी बात सुनता हूं तब समझ जाता हूं कि उनके साथ कोई विशेष समस्या है या वे किसी को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु एक बात जरा सा रुक करके सुनिए। डॉक्टर अथर्नसाइड ने यह भी कहा था कि आगे चलकर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके निर्णय परमेश्वर की इच्छा में थे या नहीं। मेरे विचार में परमेश्वर हमें कभी अनुचित मार्ग पर नहीं जाने देता है। इस पर कोई कहे, तब तो आप बुरा निर्णय भी ले सकते हैं। निसंदेह आप ऐसा कर सकते हैं। रोचक बात तो यह है कि आपके सामने दो मार्ग हैं, आप गलत मार्ग चुन लें या सच्चा मार्ग। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लौट आने या नए सिरे से आरंभ करने से रोकने वाला हो। आप एक बात के विषय में तो निश्चित हो सकते हैं। यदि आपके पास दो मार्ग हैं और आप गलत मार्ग चुन लें तो आपको समझ आ जाएगा कि सही मार्ग कौन सा है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य आसान मार्ग को परमेश्वर की इच्छा समझता है, अर्थात मानता है। आसान मार्ग सदा ही परमेश्वर की इच्छा में नहीं होता है। निश्चित ही रूथ के लिए भी आसान मार्ग नहीं था, उसे भी उन कठिन मार्गों से होकर के गुजरना था जो उसने किया। मेरे प्रिय मित्र, आज आपके लिए भी कोई आसान मार्ग नहीं है, आपको भी एक सही निर्णय लेना है। रूथ के जीवन से सीखिए कि उसने कठिन पल में भी एक सही निर्णय लिया और परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषमय बनाया। क्या आप चाहते हैं कि आप भी रूथ के समान उन आशीषों को प्राप्त करें? यदि हाँ, तो आज ही अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए आमंत्रित करें। वह आपके जीवन में आएंगे। आपका एक सही निर्णय आपके जीवन में शांति आनंद भर देगा। क्या आप चाहते हैं कि वह ऐसा करें? यदि हाँ, तो आप आज ही प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने दें। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आशीष प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम और भी गंभीर बातों को देखेंगे जो रूथ के जीवन से जुड़े हुए हैं। तब तक प्रभु आप सबकी सहायता करें।
बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे, पीछे न मुड़कर देखेंगे। यीशु रहेगा साथ, हम किसी से न डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
कांटों भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभना होगी हमको। कांटों भरे पथ से हम चलेंगे, कोई चुभना होगी हमको। लेके सहारा यीशु का, मंजिल को पहुंचेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। चाहे हो अंधेरा या हो तूफान, हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे हो अंधेरा या हो तूफान, हिम्मत से आगे बढ़ते रहेंगे। वो